एक चीज के बारे में ऐसा सोचा जा सकता है जो हमने चुनी है, चिटा पड़ोसी को रंग लिया तो वो हमारा दीप हो गया, ऐसा करके खाने की चीज हमने चुनी, चिटा जो है खाने की चीज तो है। और सबसे बड़ी चीज की नारियल को बहुत शुभ माना गया। और शुभ क्यों माना गया? नारियल बाहर से भले ही कठोर है लेकिन भीतर बदी। तो साधु कभी यही स्वभाव होता, वो अपने प्रति कठोर होता है, बाकी के प्रति कठोर नहीं होता, ये उसका नेचर। नारियल की प्रशंसा इस बात में की जाती है कि नारियल जितना पानी लेता है उतना अपने पूरा संचित करके रख लेता है, और कोई रेगिस्तान में पीने वाला पानी हो तो उसको डाब को बहुत यूज करते हैं, डाब का पानी। तो कृतम उपकार न विस्मर की साधवा, इसके लिए नारियल का उदाहरण दिया है कि किए गए उपकार को जैसे कि सज्जन पुरुष नहीं भूलते हैं, इसी तरह ये नारियल देखो इसने पृथ्वी के द्वारा किए गए उपकार को नहीं भूला और पानी को वापस लौटा दिया, ऐसा करके नारियल को विशेष वो माना गया। तो अपन फल में भी नारियल चढ़ाते हैं और उसी की चिटक बना करके उसी को खाने के रूप में, तो नैवेद्य में भी उसी का दीप बना लेते हैं। इस तरह लगता है कि हमने कुछ इस तरह की चीज़ें चुनी हैं जिनकी अपनी कोई विशेषता है, तो विशेषता ये भी है, ऐसा भी कह सकते हैं। बाकी और कोई लॉजिक नहीं लगता इसमें, चावल का तो लगता है। नहीं नहीं होगी उसको, हम क्या है नाम पूजा, हम भगवान के 24 तीर्थंकरों के नाम की पूजा करते हैं, तो ये नाम पूजा कहना कि जैसे सहस नाम पूजा कही तो वो नाम पूजा कहना है। फिर क्षेत्र पूजा, हम अपने मंदिर में बैठे हैं लेकिन नंदीश्वर का अर्घ चढ़ा रहे हैं, कृत्रिम अकृत्रिम चैतन्य का अर्घ चढ़ा रहे हैं, ये क्या है मतलब क्षेत्र पूजा। फिर कभी कभी हम आज शुक्ला त्रयोदशी के दिन उनको निर्माण हुआ उसका चढ़ा रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे काल पूजा, उस समय की पूजा कर रहे हैं। दीपावली को हम किसकी पूजा कर रहे हैं, महावीर भगवान की भी पूजा कर रहे हैं और साथ में छः उस काल की पूजा भी कर रहे हैं, वही दिन है ये जिस दिन भगवान को निर्माण हुआ था। और अगर पावापुर में जाके करते हैं तो क्षेत्र पूजा, इस तरह से ये पूजा नाम पूजा क्षेत्र पूजा काल पूजा भाव पूजन को कहलाता है, जिसमें कि हम अपने भावों को भगवान के गुणों में लगा देते हैं, तो भाव पूजा कहलाती है। द्रव पूजा में वो कहलाता है जो हम भगवान के शरीर के गुणों की वर्णन करते हैं कि आप इस प्रकार के, आपका शरीर इस प्रकार का है, पूरा शरीर का वर्णन करते हैं, भगवान के शरीर का वर्णन करके पूजा करते हैं, तो वो कहना है कि द्रव पूजा। ऐसे करके मैंने बताया नहीं था कि इतने तरह की पूजा होती है, अकेले नाम की पूजा या क्षेत्र विशेष की पूजा।
द्रव्य पूजा तो ज्यादातर व्यवहारिक भाषा में तो यही है द्रव्य चढ़ाएंगे तो वो भाव पूजा,
यहाँ ऐसा अर्थ नहीं लेना, नाम क्षेत्र वो द्रव क्षेत्र काल भाव है ना, तो इसी तरह से स्थापना होती है, नाम स्थापना द्रव स्थापना क्षेत्र स्थापना भाव स्थापना, ये इस तरह से इस अपेक्षा से पूजा का अर्थ लग जाएंगे। द्रव्य पूजा में भगवान के बाह्य गुणों की प्रशंसा करना और भाव पूजा में उनके अंतरंग गुणों की पूजा करना, ये दोनों में इतना फर्क है। द्रव पूजा भाव पूजा अलग है, ओके कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया था, तर्क नहीं किया, पर होती है ये इस प्रकार की पूजा होती है, इसलिए मैंने फिर भी ये कहा था कि नैमित्तिक पूजा, एक तो दैनंदिन पूजा और एक नैमित्तिक।
कौन सी पूजा होती है द्रव्य पूजा में जिसमें भगवान के शरीर का,
तो इसमें भक्तांबर में तो है कई जगह है, यही शांत राग रुचि भी परमाणु स्तम निर्मापित आपसे सुंदर कोई रूप ही नहीं है, तो रूप का वर्णन कर रहे हैं, उनके आठ प्रातिहारी का वर्णन कर रहे हैं, ये सब उनके बाह्य गुणों का समोषण का कर रहे हैं वर्णन, सब में इसी तरह से चली जाएगी ये द्रव स्तुति या कि द्रव पूजा कहलाएगी, जिसमें भगवान के हम रूप का वर्णन करते हैं विशेष रूप से बाह्य रूप का। ये मंदिर की घंटे की ध्वनि एक्चुअली मंदिर को समोषण का प्रतीक माना है और उसके सामने मानसस्तंभ, तो एक्चुअली मंदिर जो बनता है इसी तरह बनना चाहिए कि मानसस्तंभ सामने और मंदिर, ये पूरा प्रतीक हो जाता है समोषण का। समोषण की विशेषता होती है कि जिस दिशा से जो भी आएगा वो तो सबसे पहले भगवान के मानसस्तंभ का दर्शन करेगा, तो उसकी टोपी गिर जाएगी, वैसे ऊपर करेगा तो मतलब अहंकार टूट जाएगा, गिरेगा वो टोपी गिरे बिना नहीं रहेगी, पगड़ी होगी तो ऊपर देखेगा दर्शन करेगा, तो कहते हैं कि आप थोड़ा सा विनम्र तो हो ही जाएगा, तब तब जाके दर्शन होंगे भगवान के, तो पहले मानसतम और फिर बाद में मंदिर, मंदिर प्रतीक हो गया समोषण का। समोषण में क्या हो रहा है, दिव्य ध्वनि खेल रही, सिर्फ एक ओंकार ध्वनि, उसको दिव्य ध्वनि कहते हैं। तो ओंकार ध्वनि का प्रतीक क्या है, जैसे मैं मंदिर में प्रवेश करूँ तो मैं एक स्पेशल साउंड जो कि घंटे के टकराने से निकलता, घंटे के टकराने से जो नाद निकलता है वो अनहद नाद है। गणित तो अनहद नाद वो है जिसमें कि कोई प्रयास ना हो, अनाहत कभी खत्म ना हो, पर ये जो कोनिकल शेप होता है घंटे का, उसमें जो वाइब्रेशन होते हैं वो बहुत समय तक रहते हैं। इस दृष्टि से अपने हल्के से घंटे की ध्वनि करें, उसके नीचे खड़े हो जाए तो फील करेंगे कि कुछ हमारे अंदर पवित्रता आ रही या ध्वनि का हमारे ऊपर असर हो। ध्वनि प्यूरिफिकेशन के लिए भी, प्यूरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे मंदिर को पवित्र करती और मंदिर के वातावरण में हमें एक कल्पना जागृत करती है कि मैं समोषण में प्रवेश कर रहा हूँ, वहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि ऐसे ही निरंतर गिरती है। और घंटा प्रतीक है कि मैं बाहर के कोलाहल से मुक्त होकर मंदिर के पवित्र वातावरण में प्रवेश, दिव्य ध्वनि के क्षेत्र में प्रवेश करता हूँ, बाहर का कोलाहल छोड़ता हूँ। तो जैसे ही प्रवेश करें तो घंटे की ध्वनि, अपन लोग घंटा भीतर लगा देते हैं तो जहाँ पैर होते हैं वहाँ उसके जस्ट बाद जो है घंटे की पवित्र होकर प्रवेश, ये इसलिए घंटा उसका चार्ज वाटर है गंगोदक पे, एक तरह से मूर्ति के ऊपर अभिषेक किया गया तो चार्ज हो गया वाटर, वो अपन उसको करते हैं उत्तमांग पर, माथे पर लगाने का है एक्चुअली, फिर उसके बाद ज़्यादा होता है तो आंख में वहाँ गले में, इतना ही लगाना चाहिए। तो प्रेयर केसेस में व्यक्ति की उन श्रद्धा होती है तो वो सारे शरीर में भी लगा देता है, लेकिन अपने लिए अलग से ले जाएगा और अपने घर में आराम से लगाएगा, कोई मंदिर में करना नहीं, मंदिर में तो सिर्फ बजी किसी अपने स्पर्श नहीं किया पवित्र। अपनी तो फिर भी वो गंदों तक रह जाता है वो श्रद्धा की वजह से, बाकी उसमें उतनी प्रॉफिट नहीं होता जितना कि तुरंत अभिषेक किया और तुरंत ही ले दिया। नहीं भी बनता है तो ये पवित्र भगवान का जल है जो मुझे पवित्र करेगा मेरे सारे कर्मों का नाश, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पाप, पापों का नाश करने वाला ये निर्मल और निर्मल करने वाला, स्वयं भी निर्मल है लेकिन निर्मल करने वाला ये गंधोदक है। बंदे जिन गंधोद कम अष्टकर्म में नाश होना, जब तक खाना खाते तब तक भोजन का त्याग हो जिसका उसके लिए बोल रहे जितने बजे तक आप खाना खाओ तो
पूजा करने के बाद पूजा करते हैं ना, पूजा करने के बाद फिर जो द्रव्य चढ़ाते हैं तो उसके बाद आशी कर लेते हैं ना, तो वो जो चढ़ाते हैं द्रव्य के लेते
हैं
जैसे हम पूजा करते
हैं। अगर अपन ने स्थाप करा है स्थाप करा तो फिर स्थाप को या तो अपन छोड़ के चले जाए कोई और आए और उसमें पूजा करें, है ना। और अगर अपन को लग रहा है कि पता नहीं कौन क्या करेगा तो इस स्थाप को अपन को विसर्जित करना, तो विसर्जित करने की तीन प्रक्रियाएं हैं, मैंने इंटरेस्ट नहीं किया था उसको, या तो हम सीधे के सीधे सारे चावल जितने हमने स्थाप किए थे उसको उठाएं और अग्नि में समर्पित करते हैं, अगर जल रही है धूप तो जो स्थाप किया उसको हमने ठीक है होने में जो स्थाप किया था, या फिर आप ऐसी व्यवस्था नहीं है तो क्या करें उसमें थोड़ा सा जल डाला सामान और उसको करके माथे पर लगाया, बाकी वो ऑर्डनरी चावल होगा इनको ऐसे ही डाल दिया, फिर जिस थाली में अपन अभी चढ़ा रहे थे सब ऐसे ही डाल दिया। और अगर इतना भी नहीं करना है तो सीधा चावल जो कहते हो वो डाल दो, उसमें विसर्जन हो गया और प्रणाम कर लिया कि जो भी गलती रह गई हो उसको क्षमा कर लिया।
नहीं
सब
पूजा करने
बात है उसी
को ऐसे
श्री जिनवर की आरती कर लीजिए श्री चढ़ाए पाठक है
भगवान की आशी का लेना चाहिए ना कि जो द्रव्य तुमने चढ़ाया उसकी
देनी चाहिए। क्या है ये व्यवस्था अपन उसमें बहुत ज्यादा नियम में करने लगे आजकल लोग, बाकी है तो यही कि किस श्रद्धा से मैंने ये जो स्थाप किया था किस बात का किया था कि मैं भगवान को अपने सम्मुख मान रहा हूँ, और ये तीन चावल प्रतीक हैं कि भगवान आपको मैंने मूर्ति में माना है और मैं भी स्थिर रहा हूँ इतनी देर तक, इसके कंफर्मेशन के बाहर ले जाना पड़ेगा। बेटे को बेटे को संभालना पड़ेगा, ऐसे करके आप कैसे उसको
महाराज
नहीं सुन सकते आप धर्म की बात
महाराज।
मैं अभी दूसरा क्वेश्चन कर रहा था। आप पहले तो कई लोग स्थापित नहीं मानते, और स्थाप हम किसी देवी देवता का तो कर नहीं रहे ना भगवान का कर रहे। स्थाप सिर्फ इंडिकेशन है कि मैं स्थित रहूंगा यहाँ पर, और भगवान स्थित है मेरे लिए मूर्ति में। वो हालांकि सिद्ध सलाम बैठे हैं, लेकिन मैंने अपने जब तक पूजा करूंगा तब तक भगवान को इसमें स्थापना की है कि ये वही है। हमने गुणों की स्थापना करी है, ये हमारा इंडिकेशन। हम किसी के घर जाते हैं, बेटे की शादी में गए हैं या कि बेटा हुआ है उसमें गए हैं, तो जाकर के हम कुछ दे के आते हैं कि नहीं आते, क्या वो गरीब है दो रुपये उनको देने जा रहे हैं? नहीं, लेकिन हमारा व्यवहार है, हमारा आपसे स्नेह है, हमारी आपसे आत्मीयता है, बस की सूचना है। तो इसी तरह तो हमें सूचना करना पड़ेगी कि मैंने शुरुआत कर दी है ये स्थाप, जब तक ये तीन चावल इसमें चढ़े हैं तब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, अपने को स्थित करता हूँ यहाँ भगवान के सम्मुख। मैं पूजा शुरू कर रहा हूँ, तो जब इसको पूरा कर दूंगा तो वापिस चले जाऊँगा। इसको प्रणाम करता हूँ, इसको प्रणाम थोड़ी कर रहा हूँ, वास्तव में तो भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ। आशिका का मतलब ये है कि उनसे मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, कोई देने वाला नहीं है, मुझे ही अपने हाथ से ले लेना आपका आशीर्वाद। देखना आप जैन जी को मैंने अपने एक बार नहीं कोट किया था, मैंने कि जैन जी ने लिखा कि देखो तो इसमें ज्यादा आश्चर्य नहीं है कि पत्थर को भगवान बना लिया आदमी, आश्चर्य तो इसमें है कि उसमें से आशीर्वाद ही दे दिए। तो बड़ा भरा भरा लौटता है कि भगवान ने जैसे आशीर्वाद दे दिया, क्यों आप कोई नहीं, एक तो भगवान ही नहीं है और फिर आशीर्वाद कहाँ से मिल गया आपको? लेकिन दोनों चीज कर लेते हैं हम, भगवान भी पा लेते हैं और भगवान से आशीर्वाद भी पा के लौटते हैं कि जैसे हमारा काम हो जाएगा सब, हम क्या है भगवान की ये क्या चीज है। तो उसी आशिका जो है भगवान से आशीर्वाद की प्रतीक है कि क्या करूं, आप तो देते नहीं, मैं अपने हाथ से ले लेता हूं आपकी आशिका, आशीर्वाद अपने हाथ से ले लूं, अपने ही सिर पे आशीर्वाद दे दिया अपने को, अगर देखें अपने सर पे। हाँ, बड़ा इसलिए तो नाटक कैसा लगता है, कई लोगों को पागलपन लगता है कि ये क्या मजा रखा हुआ, लेकिन ये पागलपन नहीं है, ये हमारी कहना चाहिए बुद्धि को हमने सारा। एक जगह मैंने पढ़ा था कहीं पर कि जब ज्ञान के चार दीवारी पार करके आया हूँ तब पहुंच पाया हूँ यहाँ तक, ऐसा करके कुछ था उसका भाव। जब मैंने ज्ञान को बांध मूल के रख दिया, जब मैं अज्ञानी हो गया, ना समझ हो गया, तब यहाँ तक पहुंच पाया, नहीं तक तेरे पास तक पहुंचने की हिम्मत नहीं थी, मेरा ज्ञान मुझे बीच में रोक देता। तो ये तो पूरी लगेगी बिल्कुल अज्ञानता की प्रक्रिया लगेगी, तो किसी के कहने में पर नहीं आए, ये तो भक्ति में कुछ सुनना नहीं चाहिए, कोई डायरेक्शन दे तो उसे प्रणाम करना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने डायरेक्शन दिया। नहीं सही है, मुझे लगता है कोई भी डायरेक्शन दे तो उसको प्रणाम करना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने डायरेक्शन दिया, समय आपने बेकार बर्बाद किया, हमें मान बांटना कुछ नहीं है, जो करना हमारे भगवान और हमें कोई भी लगता नहीं। अच्छा, गलती भी नहीं होती, मजा ये है कहीं भी पूजा की कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं लिखी, मैंने इतना देखा कहीं भी, बस ये लिखा है कि पूजक को कैसा होना है, पूज्य कैसा हो और पूजक कैसा, पूजक पवित्र और पवित्रता के लिए वो पूजा करना, बस इतना ही लिखा हुआ, इसके अलावा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किस हाथ से चढ़ाना है, किस क्या करना, स्थाप कैसे करना, जिसमें अपना मन है। एक ही पॉइंट है इसमें कि दिन भर मैं अपने जीवन में पवित्रता बनाए रखूंगा, इस बात की शिक्षा मंदिर से दे सकता हूँ, क्योंकि मंदिर में मैंने एक कमिटमेंट किया है कि मैं पवित्रता की पूजा करूँगा। तो मैं अब अपने पूरे जीवन में दिन भर सुबह से शाम तक घर में दुकान में मकान में मैं कोशिश करूँगा कि मैं पवित्र करूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे कि मेरी आत्मा मलिन हो जो उसका पूजा केवल मंदिर तक सीमित ना रहे, मकान दुकान घर आंगन रोकड़ बनी कल कारखाना सभी में पवित्रता का ध्यान रहे, ये जो है ये उसका व्यवहार। अभी थोड़ा सा मेरी क्लास है, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर एक तरह से क्या आज अपने को मैं जल्दी कर रहा हूँ मेरे कार्यक्रम में, नहीं तो ये छूटता जा रहा है। पॉइंट वाइज एक एक चीज जस्ट करूँगा नमो कार्य के बारे में, कितनी चीज़ों को अपन कर सकते हैं। और सबसे पहले तो हम सामान्य रूप से ये समझें कि मंत्र कैसे है, और मंत्र के पीछे साइंस क्या है। तो सबसे पहली चीज, मंत्र जो है वो बीज है, जिसमें कि पूरे वृक्ष के होने की संभावना है। मंत्र बीज है जिसमें कि पूरे के पूरे वृक्ष के होने की संभावना है। दूसरी चीज, अब जब मंत्र एक बीज है और उसमें वृक्ष होने की संभावना है, तो हम क्या सेंस करेंगे और क्या फील करेंगे? दो शब्द, मंत्र को पहले सेंस करना होता, उसका अंदाजा लगाना पड़ता है। सेंस करना होता है, अंदाज लगाना, अनुमान लगाना कि इसमें से क्या एक्सप्लोर हो सकता है, और फिर जो एक्सप्लोर हो सकता उसको फील करना। मंत्र के साथ दो चीजें जुड़ी, सबसे पहले हम मंत्र की शक्ति के बारे में एक इमेजिनेशन करें कि मंत्र इतना शक्तिशाली है। जैसे हम बिल्डिंग के सामने खड़े होकर के एक अंदाज करते हैं कि इसमें कितनी मंजिल होंगी और कितने आदमी रह सकते हैं, कि किसी तरह जब हमारे सामने कोई मंत्र आए तो हम उसकी शक्ति का अंदाजा लगाएं, सेंस करें। नेक्स्ट, उसके बाद अब हाउ टू फील, जो हमने उसमें जो उसमें वृक्ष देखा है बीज में, तो हम उसको कैसे पैदा करें, इस बीज को कहाँ बोएं जिससे कि वृक्ष पैदा हो, ये इसी तरह मंत्र के साथ में करना पड़ेगा। हमें ये जानना पड़ेगा कि इस मंत्र में से वृक्ष कैसे पैदा हो जाएगा अगर ये मंत्र बीज है। तो ये सेंस करना और फील करना, दो चीज़ें मंत्र के साथ होती हैं। अपन लोग मंत्र को शक्तिशाली तो मान लेते हैं सुन सुन करके कि मंत्र बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये अंदाज कर लेने के बाद भी हम उसको फील नहीं कर पाते। फील कब होगा? जबकि उसमें से कोई वृक्ष पैदा हो जाए तब। और वृक्ष पैदा कैसे होगा? जबकि हम उसे भावना की भूमि में बोएंगे। अगर मंत्र बीज है तो उसे किसी जमीन की जरूरत होगी, खाद पानी की जरूरत होगी, तब वो उगेगा। तो उसी तरह से हमें अपने भावना की जमीन उसे देना पड़ेगी। ये अपन बाद में टच करेंगे, कितनी चीजें हमें मंत्र को विस्तार देने के लिए आवश्यक है। मंत्र में जो छुपा हुआ है उसे प्रकट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये सबसे कीमती। पर दूसरा मंत्र का एक और है, मननाथ मंत्र, जिससे हम कोई मंत्रणा कर लें, जिससे हम कोई सलाह ले लें, सजेशन ले लें, वो कहलाता मंत्र। हमारे समय में हमें कोई अच्छी सलाह देने वाला जैसे हमारे पास रहता है एक सलाहकार, ठीक इसी तरह से मंत्र हमारे लिए एक सलाहकार की तरह है, सजेशन देता है। और किस बात का सजेशन देता है कि आप क्या हो सकते हैं, इस बात का सजेशन देता है, आपके अंदर क्या कैपेसिटी है, आप क्या हो सकते हैं, इस बात की सलाह मंत्र देता है। मंत्र के भीतर क्या है ये हम जानेंगे, लेकिन मंत्र हमारे भीतर क्या है उसको प्रकट करता है। दोनों चीजें एक साथ है कि मंत्र बीज की तरह काम करता है और स्वयं ही पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, फलता है, सब कुछ छाया देता है। दूसरी चीज, हमें इस बात की मैं कहना चाहिए समझ देता है कि हमारे भीतर क्या है, हम क्या हो सकते हैं, ये समझ भी मंत्र, ये अच्छी सलाह हमें मंत्र देता है। तो इस तरह से मंत्र के दो अर्थ हैं कि मंत्र बीज है जिसके भीतर वृक्ष की संभावना है, उसे हमें सेंस करना है, उसे हमें फील करना है। फिर दूसरी कि मंत्र एक सजेशन है, मंत्र एक सलाह देने वाला, मंत्रणा देने वाला वो है। और किस बात की मंत्रणा? कि हम क्या हो सकते हैं, इस बात की मंत्रणा, हम अहंत हो सकते हैं। जब हम नमोकार के संदर्भ में बात करेंगे तो नमोकार में क्या शिक्षा देता है कि मैं जिसे प्रणाम करता हूँ वो मैं हो सकता हूँ। मैं अगर साधु को प्रणाम करता हूँ तो मैं साधु हो सकता हूँ, मैं उपाध्याय हो सकता हूँ, मैं आचार्य हो सकता हूँ, मैं अहंत प्रसिद्ध हो सकता हूँ। ये नमोकार हमें सलाह देता है। और नमोकार बीज है, उस बीज के अंदर पूरा द्वादशांग है, ये अपन बाद में समझेंगे। दो चार मैंने पीरियड के बाद में एकदम एकदम पूरा द्वादशांग अपन के कैलकुलेशन करेंगे, बिल्कुल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे नमोकार के शब्दों का, उनके अक्षरों का, वर्ण, उनके स्वर, व्यंजन, सबकी संख्या के कैलकुलेशन करेंगे तो अपन आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इसके अंदर बहुत सारी संभावना है। तो पूरा वृक्ष अपन उसके भीतर देख लेंगे नमोकार के भीतर। ये नमोकार के संबंध में, नमोकार के संबंध में एक चीज और कह लें कि नमोकार में व्यक्तित्व की वंदना है, मंत्र के अर्थ नहीं होते लेकिन नमोकार अर्थवान है। ये नमोकार की विशेषता, वैसे मंत्र के अर्थ नहीं निकाले जाते, अति अवसर नमा ओम राम भीम क्या अर्थ है, कुछ अर्थ नहीं, लेकिन नमोकार मंत्र का अपना अर्थ है। नमोकार मंत्र में व्यक्तित्व को प्रणाम किया गया है, वहां पर गुणों की वंदना है। ये मंत्र और नमोकार के संदर्भ। अब मंत्र के पीछे छुपा हुआ साइंस क्या है? छुपा हुआ साइंस इतना ही है कि उसमें ध्वनि है और उसमें कुछ वर्ण है, जो अक्षरों से बनती है, एक ऐसी अक्षरों की संयोजना जो कि हमें हमारी अपनी शक्ति को प्रकट करने में काम आती है, वो कहलाता है मंत्र। शब्दों की सिर्फ एक संयोजना है, शब्दों की नहीं, अक्षरों की, वर्णों की, वर्ण की एक ऐसी संयोजना जो कि हमारे लिए हमारे भीतर छुपी हुई शक्ति को प्रकट करने में काम आती है, वो कहलाता मंत्र। हर शब्द मंत्र हो सकता है, हर वर्ण मंत्र हो सकता है, लेकिन उसको इस तरह से गूंथा जाए, इस तरह से उसको अरेंज किया जाए कि वो हमारे भीतर बैठी हुई शक्ति को तोड़ कर सके, उद्घाटित कर सके, ये मंत्र में विशेष ध्यान रखें। तो मंत्र में, मंत्र के पीछे साइंस क्या है? वर्ण। तो हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली वर्ण है क्या, अक्षर क्या चीज है। अक्षर की अगर परिभाषा अपन देखें तो जिसका अक्षर नहीं होता, जिसका क्षरण नहीं होता, डीके नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, वो अक्षर है। तो अक्षर से बना हुआ है शब्द, यानी शब्द जो के मंत्र जो है वो शाश्वत हो गया, वो कभी नष्ट नहीं होगा। और हमें अगर मंत्र का जाप करेंगे तो हमें भी वो अक्षर बना देगा। अगर हम अक्षरों का ठीक ठीक, अब अक्षर के साथ जुड़ी हुई उसकी ध्वनि, तो उस अक्षर का ठीक उच्चारण करेंगे तो उससे वो ध्वनि निकलेगी, तो वो ध्वनि हमें काम करेगी। अब देखें हम मंत्र का वर्ण और मंत्र का जो ध्वनि है, दोनों पर हम अपना कंसंट्रेशन करें। मंत्र के वर्ण, हर एक वर्ण का कोई ना कोई एक रिदिम होता है। कितने ढंग से पढ़ सकते हैं? जितने आदमी हैं आप उतने ढंग से पढ़ सकते हैं, जितने आदमी हैं आप उतने ढंग से लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली आ है क्या, कैसी ध्वनि है, ये सीखना आवश्यक है। जब भी मंत्र के बारे में हम सीखें तो किस शब्द की क्या, किस वर्ण की क्या ध्वनि है, ओरिजिनल क्या है, इसका प्रयास करना। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये तो प्रयास से मालूम पड़ेगा कि जब मैं ऐसा उच्चारण करता हूँ तो इस तरह लगता है, जब मैं दूसरे ढंग से उच्चारण, उसमें लिखा हुआ है कि जितनी मधुरता से किसी वर्ण का और जितनी संवेदनीयता के साथ, जितनी कोमलता के साथ हम वर्ण को टच करते हैं अपने कंठ के द्वारा, उतना अधिक उसमें शक्ति आती है। इसके पीछे साइंस है, क्योंकि प्रत्येक छंद की एक रिदिम, प्रत्येक वर्ण का एक छंद या कि रिदिम है, प्रत्येक वर्ण का एक देवता है। देवता और कोई नहीं होता, देवता उसका शेप, हर वर्ण का जो शेप है कोई उसका अधिष्ठात्री देवता है। वो कहते हैं ना कि मंत्र का एक देवता होता, मंत्र का देवता होता नहीं, मंत्र की जो आकृति है वो उसका देवत्व है। फिर मंत्र की एक शक्ति होती है, पोटेंशियलिटी जिसको बोलते हैं, और मंत्र की एक आभा होती है जिसको अपन रेंज बोलते हैं। कितनी रेंज है, किस वर्ण, हर वर्ण की एक रेंज होती है। और वर्ण पांच प्रकार के होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांचों प्रकार की उनके अंदर पोटेंशियलिटी होती है और इनकी अपनी अपनी रेंज होती है। ये वर्ण के बारे में इतनी चीज अपने को जाननी चाहिए। उच्चारण करते समय हमें किसी भी वर्ण का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी नेचुरल, कहना चाहिए क्या कहेंगे उसको, देकेज, वोकल्स तो ठीक है, नैसर्गिक यति कहलाते हैं, मतलब रिदिम ही कहेंगे, यति को भी रिदिम कह दें, जैसे रिदिम नहीं कहेंगे, यति को मैं कहते ना यति भंग हो गया, यति भंग हो गया मतलब दो शब्दों को जोड़ करके कहना चाहिए था, जहां वहां हमने एक शब्द पहले के लिए एक बात में, इसको बोलते यति, जहां ठहरा जाए, जहां ठहरना है या जित उसको बोलेंगे यति। तो एक नैसर्गिक यति होती है मंत्र में, कहां हमें ठहरना है, कहां विराम देना है, कहां हल्का रुकना है, ज्यादा रुकना है, ये कहलाती यति। तो एक नैसर्गिक वर्ण की यति होती, उसका ध्यान रखा जाए। दूसरा लय, उसको बोलेंगे रिदिम, इसमें आ जाएगा लय। मधुर कंठ के द्वारा अगर लय होगी तो उसमें अधिक, हम किसी भी शब्द को चाहें तो बहुत हल्का सा तर्क दे सकते हैं, किसी शब्द को चाहें तो बहुत गहरा तर्क दे सकते हैं, किसी शब्द को हम चाहें तो बहुत कर्कश बना सकते हैं। वर्ण वही है, गाली में भी वही अक्षर है और मंत्र में वही अक्षर है, बताइए तो क्या फर्क हो गया, क्या फर्क हो गया? वर्ण तो है, लेकिन वर्ण में कोई एक लय है, वो लय हम चेंज कर देते हैं। नॉइस और म्यूजिक में फर्क है, क्या फर्क है? जब हम उसकी रिदिम को तोड़ मोड़ करके अट्रेंडम कर देते हैं तब वो नॉइस हो जाती है, उसी वर्ण को जब हम जैसी उसकी रिदिम है वैसा बोलते हैं तो वही मस्त हो जाती है। इतना सा वर्ण का खेल, वर्ण का साइंस क्या है। फिर देखिएगा आरोह और अवरोह, कहाँ तक ऊंचे ले जाना है, कहाँ से उसे नीचे छोड़ना है, ये आरोह अवरोह। और जितना सुस्पष्ट उच्चारण उतनी ज्यादा वर्ण में शक्ति है। वर्ण के साथ पांच चीजें याद रखें, उसकी नैसर्गिक गति, उसकी अपनी लय, उसका आरंभ अवरोह और उसका स्पष्ट उच्चारण। ये जब तक हम पांच चीजें वर्ण की नहीं सीख लेंगे और ये नहीं जानेंगे कि वर्ण का अपना शेप क्या है, उसकी पोटेंशियल भी क्या है और उसकी रेंज क्या है, तब तक हम मंत्र का लाभ नहीं लेंगे। ये सिर्फ वर्ण है, अभी अभी अपन ने ध्वनि पर कोई चर्चा नहीं की। इसके साथ छुपी हुई ध्वनि, वर्ण तो ये वर्ण है, ये सब वर्ण लिखे हुए हैं, लेकिन इनकी अपनी कोई ध्वनि है। उस ध्वनि को कैसे समझें हम, उस ध्वनि के पीछे क्या छुपा हुआ है, अब ये देखें। वर्ण और शब्द में फर्क क्या है, वर्ण ये है, लेकिन जब इन्हें हम बोलते हैं, जब चेतना इन पर आघात पहुंचाती है, तब वो ध्वनि प्रकट करते हैं, तब वो शब्द है, वर्ण ही शब्द बन जाता है। भीतर हमारे वर्ण है, लेकिन वो भाषा में परिवर्तित होकर के और शब्द बन रहा है। हम वर्णों को आंख से देख सकते हैं, कान से नहीं सुन सकते, लेकिन शब्द को हम कान से सुन सकते हैं, लेकिन शब्द के पीछे छुपे हुए वर्ण को भी आंख से देखना, ये मंत्र का उद्देश्य है। मंत्र में जो हम बोल रहे हैं वो हमारे सामने वर्ण है और उसमें से ध्वनि निकल रही है, जो कि हम खुद बोल रहे हैं, जबकि हमें ये वेद लग रही है कि मंत्र में से वो ध्वनि निकल रही है लगातार, वो मेरे कानों में आ रही है। इवन जबकि हम नहीं बोल रहे हैं मंत्र, तब भी हमें उस नमो, वर्ण है हमारे सामने नमो, लेकिन उस नमो में से ऐसे लग रहा है जैसे कि वो मेरे पूरे रोम रोम में से वो नमो निकल रहा है। ये जो इम्पोर्टेंस इसमें ध्वनि की, हर मंत्र अगर हर वर्ण में से अगर उसकी ध्वनि निकलने लगे, तब तो फिर वो वर्ण जो है हमें सिद्ध हो गए। कहते हैं कि शब्द साधना करी है, शब्द सिद्ध हो गए। शब्द सिद्ध नहीं होते, जो वर्ण है उनकी ध्वनि कैसी होनी चाहिए, जब ये हमारे भीतर निकलना शुरू हो जाता है। ध्वनि के प्रयोग बहुत सारे हैं, ध्वनि में, शब्द में ध्वनि भी है और वर्ण भी है। वर्ण हमारे भीतर है, आ हमारे भीतर एक इमेज है आकी, उसका उच्चारण कैसा करना है ये हम करते हैं। तो शब्द के सामने दोनों चीजें, ध्वनि तो जो है कहीं बाहर से भी हो सकती है, जैसे कि हाथ ताली बजाएंगे तो ध्वनि होगी, लेकिन इसमें चेतना का कोई हाथ नहीं। ये तो हम इंस्ट्रूमेंट पे ड्रम पर आपके वो करेंगे, ठोकेंगे, पीटेंगे, तभी ध्वनि होने वाली है, लेकिन वो ध्वनि नहीं है मंत्र में, वो ध्वनि नहीं। मंत्र में चेतना के साथ आत्मा और मन का संयोग है शब्द। देखिएगा वर्ण के साथ में जब आत्मा जुड़ गई है, तब जो ध्वनि उत्पन्न हुई है वो बिल्कुल जुड़ी है, और ये जो नैसर्गिक जो ध्वनि होती है वो बिल्कुल अलग है, इसलिए इस ध्वनि का इम्पोर्टेंस ज्यादा होगी। एक संगीत के द्वारा, आज कहते हैं कि संगीत के द्वारा हमें शांति मिलती, जबकि वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और अगर उसी संगीत, वैसे संगीत की परिभाषा सामान्य नहीं है, पर लोग सोचते हैं कि इंस्ट्रूमेंट से जो ध्वनि निकल रही है वो संगीत है, नहीं, संगीत का अर्थ होता है कि संगीत का एक कोई डायग्राम बनता है, वो संगीत जब में तीन चीज़ें जरूरी हैं, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट और कोई गाने वाला और कोई नृत्य करने वाला, ये तीन चीज़ें बहुत आवश्यक होती है संगीत में। और इन तीनों का इंस्ट्रूमेंट हमें ध्वनि देता है, और जो व्यक्ति है वो उस ध्वनि के साथ अपनी अपने शब्दों को मिलाता है, सीखते ना सा, तो उसमें से सा निकल रहा है, आपके यहाँ से भी वही निकलना चाहिए, तब तो है, तो वो इंस्ट्रूमेंट से सा निकल रहा है और अपने से भी सा निकल रहा है, और उसके साथ नृत्य, सा की मुद्रा कैसी होगी, सा की एक मुद्रा भी है, जब सा रे गामा कहेंगे तो उसकी एक मुद्रा है। कैसे व्यक्ति की कौन कौन से अंग थिरकेंगे, किस किस अंग में जो है स्फुरण होगा, जिसको अपन अनुचटन भी बोलते हैं, ये ठीक अपन आ गए और निकट कि हर पुद्गल में फ्यूजन और फिशन होता है। ठीक इसी तरह जब हम वर्ण का और ध्वनि में कन्वर्शन करते हैं, तब उसमें फ्यूजन और फिशन दोनों की प्रोसीजर होती है। जैसे कि आपके कहते ना कि फूल चटक गया, फूल फूल रहा है जबकि प्रस्फुटन होना, तो ये विखंडन की प्रक्रिया है, और ताली बजी सम ये फ्यूजन हुआ। फिशन में तो जब बांस जो है टूटता है, तब उससे जो ध्वनि होती है वो फिशन है, और फ्यूजन जब हम ताली बजाते हैं, तो दो चीज़ों के मिलने से ये ध्वनि निकली। दोनों प्रकार की ध्वनियों का खेल इस पूरे मंत्र में, ये ध्वनि का इम्पोर्टेंस। आप जो है सब तो लिख तो पाएंगे नहीं इतनी सारी चीज़ें, पर मैंने जिस तरह से अरेंज किया था मैं सोचता हूँ। अब एक चीज़ और है कि आपके मन में ये चीज आएगी कि क्या हम जब बोलेंगे तभी मंत्र का इम्पैक्ट होगा, कहते नहीं, बोलने से मंत्र उतना ज्यादा कीमती नहीं होता जितना कि भीतर उसका चिंतन किया जाता है। तो कहते हैं तो फिर आप तो कह रहे थे कि ध्वनि की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो कहते नहीं, मानसिक जाप में भी ध्वनि उत्पन्न होती है ये हमें जानना है। वो ओरिजिनल ध्वनि है जो हमारे भीतर चार प्रकार के वचन परावाक, पशंती, मध्यमा और वैखरी। परावाक नाभि से जब वर्ण शब्द के रूप में कन्वर्ट होते हैं, जब वहां से टूटते हैं या कि जुड़ते हैं, दो शब्द जोड़ करके कोई शब्द बना रहे हैं या कि शब्दों को तोड़ करके कोई शब्द बना रहे हैं, दोनों प्रक्रियाएं भीतर होती हैं और लगातार चलती हैं। ये वैखरी तक आ गई, जबकि हृदय देश में पश्यंती, यहाँ के मध्यमा और यहाँ के वैखरी, ये इतना कन्वर्शन हुआ है तब ध्वनि सुनाई पड़ने लायक हो गई हमको। लेकिन नहीं सुनाई पड़ने वाली ध्वनि निरंतर नाभि में से फूट रही, वो वर्ण में से निकल रही। और मंत्र जो है इसी तरह, पहले हम वैखरी से धीरे से ले जाते हैं उसको। मंत्र का सबसे पहले किया जाता है भाष, तीन तरह का होता है भाष, उपांशु और जा यमाना। तो सबसे पहले भाष बोल करके करें, फिर उपांशु होंठ हिल रहे हैं सिर्फ, लेकिन ध्वनि यही कंठ में ही है, और नीचे ध्वनि ले जाते हैं और महसूस करते हैं कि वो ध्वनि नाभि में है, तब कहलाती वो मानस जा, मानस जल या अंतर जल। और भाष और उपांशु ये तीन तरह से जाप की जाती है। और बार बार क्यों हम जाप करते, बार बार क्यों हम ध्वनि करते हैं, तो कहते हैं टेम्परिंग, लोहे को गर्म करना फिर ठंडा, फिर गर्म करना फिर ठंडा, क्या होगा फाड़ लेना कठोर हो जाए। इसी तरह से फिर जोर से बोलना, फिर धीरे से, फिर और धीरे से, फिर जोर से करना, इस तरह हम अपने को पूरा का पूरा टेम्परिंग करते हैं। तो मंत्र का उच्चारण हमें टेम्पर करता है, हमें धन बनाता है निरंतर। जितना ज्यादा हम मंत्र का उच्चारण करेंगे उतनी ज्यादा शक्ति हमारे अंदर अपने आप प्रकट होगी, क्योंकि मंत्र हमें निरंतर सलाह दे रहा है कि हम क्या हैं, हमारे भीतर क्या प्रकट हो सकता है। ये पूरा का पूरा इसका खेल, एक इनिशियल एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है। मंत्र को अगर हम मन में ही उच्चारण करते हैं तो उनका कहना है कि जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, शांत बैठे हुए हैं, कोई भी आया और हम बिना कुछ कहे उसे ये फील करवा सकते हैं कि हमने आपको वेलकम किया है, और हम उसे ये फील करवा सकते हैं कि आपका अनुभव अच्छा नहीं लगा, नहीं करवा सकते हैं, जबकि हमने कुछ नहीं कहा, हमने एक शब्द नहीं कहा, ये कैसे हुआ? बस ये ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आ गया, इनिशियल एनर्जी है जो हमारे भीतर, जबकि हमने कोई ध्वनि नहीं की है, और हम अपनी प्रेम और घृणा दोनों व्यक्त कर सकते हैं जैसे बिना किसी ध्वनि के, ठीक इसी तरह से मंत्र के साथ भी हम ऐसा व्यवहार करें तो मंत्र भी हमें प्रेम भी दे सकता है और वही शब्द में घृणा भी दे सकता है। और भीतर हमारे कोई ना कोई ध्वनि है, इसको मुझे एक्सप्लेन ये करना था कि भीतर हमारे ध्वनि निरंतर चलती रहती है और वो बाहर भले ही ना प्रकट हो लेकिन उसके असर होना शुरू हो जाते हैं। तो मंत्र को हम भीतर पढ़ रहे हैं तो ये ना सोचें कि आपने तो कहा था कि ध्वनि करना चाहिए और ध्वनि तो कुछ नहीं हो रही, नहीं, भीतर हमारे निरंतर ध्वनि हो रही, इसी को बोलते हैं सुमरण। तीन चीजें मंत्र में शामिल होती हैं, और सुमरण, धुन और ध्यान, इन तीनों में मंत्र, सुमरण में मतलब बहुत गहरी स्मृति, एक छवि बनती है जब हम स्मरण करते हैं मंत्र का। मंत्र के पीछे जो हमने इमेज किया था, जैसे हमने बीज, कोई कहे कि ये बटका बीज है, फौरन पूरा बटका पेड़ हो सकता है, ये सुमरण है। जैसे ही हमने कहा कि नमोकार पढ़ूंगा, पांचों पर निष्ठी एकदम सामने आके उतर गए, ये सुमरण है। अब क्या करेंगे, अब उस सुमरण के साथ अपने को एकाग्र करेंगे, ये कहलाएगा ध्यान। मैं जिस चीज को सेंस कर रहा हूँ उस चीज के साथ अपने को जोड़ दिया, ये हो गया ध्यान। और फिर बाद में वो चीज तो गायब हो गई, मैं अपने में ही डूब गया, ये कहलाती धुन। कितने भी इनको तो धुन चढ़ गई, अब वो लग गए तो उसी में सब भूल गए दुनियादारी। तो धुन में आत्मा बेशुद्ध हो जाती है जब वो उस मंत्र में इतनी लीन हो जाती है कि बाहर से शुद्ध फूल जाती है, तब वो कहलाती कि धुन सब गई इसकी। और तीन चीजें मंत्र में, पहले सुमरण मतलब मंत्र में क्या है इसका डायग्राम, फिर उसके बाद में उस डायग्राम के साथ एकाग्र होना, और फिर इतने बेसुध हो जाना कि बाहर कुछ भी ना हो, मंत्र और हम, ये तीन चीजें इसमें आती है। देखने के लिए इन सबको जो है और थोड़ा सा साइंस की अपेक्षा से देखें तो एक तो वेवलेंथ होती शब्दों की और एक फ्रीक्वेंसी। इस दृष्टि से भी अपन देखना चाहें तो अलग अलग जितनी जितनी जो भी वेवलेंथ होगी, इसमें एक बहुत अच्छा उन्होंने दिया था कि वेवलेंथ जैसे शब्दों की होती है इसी की जब फ्रीक्वेंसी होती है, और जो रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, जब रेडियो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स को हम कन्वर्ट करते हैं साउंड में, तब हम क्या करते हैं उसको इम्पोज करते हैं मीडिया पर। ठीक इसी तरह से तब रेडियो संप्रेषण का पूरा सिद्धांत बनता। इसी प्रकार से जब हम भावना पर मंत्र के शब्दों को इम्पोज करते हैं, आरूढ़ करते हैं, तब वो मंत्र तो उसी क्षण वो मंत्र बन जाता है। जिससे हम अपनी भावना पर जो उसके वर्ण थे मंत्र के, नमो नमो हमने अपनी भावनाओं पर जैसे ही इम्पोज किया वैसे ही नमो मंत्र हो गया। तो ये पूरा इसके पीछे एक इम्पोजिशन का पूरा साइंस है, और फिर इसकी पेनिट्रेशन पावर बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा आपका रेंज होगा मंत्र, हर एक मंत्र का रेंज होता है, आवा मंडल जिसको कहते हैं, तो हर एक मंत्र में रेंज होगा कि वो कितने दूर तक इफेक्ट करे। तो हजारों किलोमीटर दूर व्यक्ति यहाँ से ध्यान करे और उसके साथ तल्लीन हो जाए तो हजारों किलोमीटर दूर तक वो मंत्र को अपना भेज सकता है ये उसके अंदर। क्योंकि क्या करना उसको, यहाँ उसकी भावनाएं हैं और जहाँ उसने ध्यान किया है उसकी भावनाओं से उसने सीधा कनेक्शन किया, और जो शब्द यहाँ इम्पोज किए थे वो टेलीकम्युनिकेट होकर के वहाँ जाकर के उसने कन्वर्ट हो गया, और उसे वहाँ वो चीज़ फील होने लगी जो उसे जो जो उसने मैसेज भेजना चाहता। मैसेज ऐसे भेजे जाते हैं, मैसेज को अपनी भावनाओं पर इम्पोज करते हैं और सीधा जो है उस व्यक्ति का स्मरण करते हैं, और इतना अधिक कॉन्टेक्ट हो जाता है कि यहाँ के सारे मैसेज वहाँ जाते हैं और वहाँ उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ से ध्वनि गई थी और वहाँ जाके वो शहर, या यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गई थी वहाँ जाके ध्वनि में कन्वर्ट। ठीक इसी तरह से हम भी करते हमारी भावनाओं पर शब्द जाते हैं और हाँ उसको वो मैसेज देते हैं या जो होना है उसका वैसा हो जाता है। ये शक्ति इतनी सारी चीज़ें अभी हम जबकि नमोकार के बारे में बिल्कुल नहीं आए हैं, अभी हमने कुछ अभी सिर्फ हमने मंत्र के बारे में समझा है कि मंत्र को हम सेंस करें बहुत कीमती है। फिर उसके बाद अब देखेंगे कि नमोकार में आखिर व्यक्ति क्या बात है जो इस सबसे भी ये इतनी चीज़ अगर मालूम हो जाए हमें तो फिर तो हम नमोकार का वैसा उपयोग करें। अभी हम नमोकार का उपयोग अपने जब दुख पड़ता है तब करते हैं, अभी हम अपने मौज के लिए नहीं करते, अपने मजे के लिए नहीं करते नमोकार का उपयोग कि आज तो बहुत मजे में है आज नमोकार पढ़ेंगे। नहीं, आज बहुत बड़ी पीड़ा हो रही है नमोकार को पढ़ना चाहिए, ये हमारी गलती यहाँ पर। हम अपने को टेम्पर करते नहीं, जब हम सशक्त हैं तब उस समय हमें टेम्परिंग करनी चाहिए ताकि हम और मजबूत हो जाएं, ताकि बाधा ही ना आए। नहीं, बाधा आने के बाद क्योर करने के लिए मंत्र का उपयोग करते हैं, और कभी कोई क्योर हो जाता है तो विश्वास हो जाता है, जब क्योर नहीं होता तो मंत्र पर विश्वास कर बैठते हैं। और अगर हमने मंत्र को पहले से कर लिया होता तो हमें एक मिनट लगना था कुछ भी कहने, एक बार नमोकार पढ़ा और काम पूरा होगा, क्योंकि हमने पहले से टेम्परिंग करके रखी, पहले से हमने अपने को जागृत करके मंत्र के ये। लिखवा दूंगा कल जाऊंगा, कल इसके मजे से ही बता पाऊंगा, कल तो और कोई बहुत जनरल सी चीज करेंगे देख लेंगे और कोई चीज देख लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा परसों संडे करेंगे। अब मैंने सोचा कि वो संडे को उस दिन क्या हुआ था, लोगों के भोजन की व्यवस्था यही थी
इसकी बड़ी नींद थी।
और पिछले संडे को मैंने देखा कि नहीं, सबको चिंता थी कि अपने को जाना है वापस, तो वापस लौट गए थे उसको, वो छवाओं नहीं थी ना तो लोग रुक गए थे उस दिन, अपने को दिक्कत पर नहीं होगी संडे को बंद कर। पंद्रह मिनट में बता सकते थे, मैं यही सोचता था 15-20 मिनट लगे, लेकिन नमोकार के बारे में 20 मिनट का जो 20 मिनट हमको 15 मिनट टाइम दिया था वो एक्सप्लेन
नहीं।